पूजा खर्च करके उसको दान दे करके और उसकी शादी करवा दिया। वो शादी करने योग्य तो था नहीं, किंतु उस दूसरे आदमी ने उस लड़की की कन्या दान करा दिया। कितना फल इसका है? बहुत है ना फल। अभी तो आप लोग कीर्तन में गए, इसका जितना फल होगा एक लड़की की शादी कराने में दान देने में उसका 1 करोड़ गुण अनगिनत गुण उसका फल होगा एक एकादशी में कीर्तन करने का थोड़ा सा। आधाया नाम वो ये था ना गजग्रह में जब युद्ध हो रहा था तो हाथी को पकड़ लिया क्या गजग्रह ने
मगर ने
पकड़ लिया और 10,000 वर्ष तक युद्ध होता रहा छुड़ा ना सका। अंत में वो पूरा नाम नहीं नारा या कहा बस अब प्रभु आ गया। इसलिए नाम का बड़ा फल है। आप लोग क्रमशः अधिक संख्या में आइए और 3 बजे 2 बजे जरूर आ जाइए। 2 बजे से 5 बजे तक आप लोगों का और 5 बजे के बाद हमारा रहेगा, नहीं तो इधर में हम लोगों का गड़बड़ हो जाता है। आप लोगों ने 6 ले लिया, अब हमारे पास में 5 मिनट के ऑप्शन, इसलिए हमारा भी 6 आप लोगों का भी 6। 2 बजे से 5 बजे तक आप लोग की संख्या और खूब खास आप लोगों की संख्या क्रमशः कम रही है
ठंडी की।
आजकल कांग्रेस में महिला कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी में महिला जनता पार्टी है, सब जगह महिला पार्टी। तो आप लोग क्यों नहीं प्रचार करके भगवान की भक्ति के लिए जैसा हम लोग करते हैं? आप लोग एक एक आदमी एक 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 महिला को जो छोटी उम्र की है उनको भी आप लोग इसमें प्रवर्तित लगाइए, इसका महान फल होता है। इसलिए सब लोगों को समझा बुझा करके और संख्या में लोग आए, आप लोगों का प्रचार यहाँ पर अधिक हो, नहीं तो महिलाएं जो नई हैं वो बहक जाएंगी, फिर बात नहीं मानेंगी और भगवान का कभी भजन नहीं करेंगी, उनका धर्म कर्म सब कुछ लुप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने रहते हुए ही लड़कियों को बहुओं को बच्चियों को लड़कों को कुछ भगवान के तरफ में रुचि लगाएं, नहीं तो बाप माँ कोई नहीं मानेंगे, धर्म कर्म कुछ नहीं मानेंगे, नास्तिक हो जाएंगे ऐसे ही। इसलिए आप लोग 2 बजे आइए, 3 बजे तक जरूर आइए, 5 बजे तक खूब फाट से कीर्तन कीजिए, कुछ भगवान की कथा सुनिए।
कहाँ गए?
हल्का से फुलझड़ी छोड़ दीजिए थोड़ा। एक समय भगवान जमलोक में गए और देखा लाखों जीव बिलबिला रहे हैं। बिलबिलाना समझते हैं ना? रोक कलप रहे हैं और उनको कोई लोहे की लाल सरसी से पकड़ करके और खौलते हुए तेल में डुबा रहा है। जो बदमाश टाइप के आदमी हैं उनको लोहा लाल कर और लोहे लाल के साथ में उनको बांध दिया, प्राण नहीं निकल रहा है किंतु शरीर जल रहा है कष्ट से। इसी तरह से कितने उनको सांप काट रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं उनको, उनको गाड़ दिया जमीन में या बांध दिया और बाघ उनको आकर के खा रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, इस तरह से लाखों प्रकार के उनको कष्ट दिया जा रहा है। जो यहाँ पर पाप किया वो सभी रो रहे थे। जब भगवान वहां पर गए, भगवान ने कहा भाई वहां पर शोरगुल आ रहा है, ये शोरगुल कैसा? लोग रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, बात क्या है? प्रभु आप मत सुनिए, आप रहने दीजिए, नहीं बतलाओ बात क्या है। तो बात यह है कि आपने हमको इस काम के लिए नियुक्त किया है जो जगत में जितने प्रकार के पाप हैं
वो यदि मनुष्य करता है, जैसे चोरी करता है, बेईमानी करता है, झूठ फोट करता है, घर में आग लगा देता है, किसी के धन को लूट लेता है देखते देखते, किसी को जान से मार डालता है, जैसे आजकल पेपरों में देखेंगे सब कॉलम भरी हुई है बस उन्हीं बातों से, नहीं? किस प्रकार से आदमी घर में सोया है और उसके घर में घुस करके उसको बंदूक से मार दिया, उसका सर्वस्व हरण कर लिया, उसके लड़के को ले गए, उसकी लड़की को ले गए जबरदस्ती, कोई कुछ रोकने वाला नहीं। ऐसे ये सब पाप करते हैं जगत में लोग, अपने पति से कोई बात छिपाते हैं, पत्नी वैसे ही करती है कुछ इस तरह से, पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानता, सेवा नहीं करता, मैया की सेवा नहीं करता, और सब जितने प्रकार के पाप हैं, इसलिए इनको दंड दिया जा रहा है, आपने ऐसा मुझको आदेश दिया था। वो जितने कर्म करते हैं हमारे दूत, वो सब लिख लेते हैं, कैसे? हमारे दूत हवा हैं, सूर्य हैं, चांद है, पृथ्वी है, कहाँ नहीं ये सब जगह तो हैं, इसलिए वो सब लोग नोट कर, मैं उनके इंद्रियों पर देवता लोग रहते हैं, वो लोग सब नोट करके और वहाँ पर टेलीफोन से बतला देते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है ना कंप्यूटर सिस्टम से, पता नहीं लगता, छोटा सा एक यंत्र रख देंगे और जर्मनी यहाँ से अमेरिका में खबर चली गई, वो चली जाती थी जमपुरी में खबर, और जब ये मरने का समय होता है तो जो पापी होते हैं यहाँ पर ले आकर के इनको दंड दिया जा रहा है, इसलिए वो बिल बुला रहे हैं कि ये जीव तो हमारे बड़े प्यारे हैं, थोड़ा सा दोष कर दिया इतना दंड, ठीक है मैं ऐसा कोई उपाय करूंगा जिससे कि इनको सहजी में इनका निष्कृति हो जाए और फिर ऐसा इनको भोग ना मिले। भगवान ने कहा जी अच्छा ठीक, मैं आज ही एकादशी बन जाता हूँ, आज से मैं एकादशी का रूप धारण करता हूँ, और आज के दिन जो एकादशी होती है ना, ग्यारहवां दिन, दोनों पक्ष में, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में, दोनों में एक ग्यारहवां जबकि आता है चंद्र के दृष्टि से, ग्यारहवीं तिथि में मैं एकादशी के रूप में हूँ, यदि कोई उस दिन अन्न नहीं खाएगा और भगवान का नाम करेगा ऐसे जैसे भी हो, और अन्न इत्यादि नहीं खाएगा, भूख लगी तो थोड़ा सा जीवन निर्वाह करने के लिए फल मूल ले सकता है, और जिसके अंदर में ताकत है, शरीर स्वस्थ है, वो एकदम कुछ पानी भी नहीं लगा निर्जला एकादशी का उपवास करेगा। हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 2 आंख है, नाक है, कान है, मुख है, उसमें जीवा है, हाथ है, पैर हैं, पेशाब करने का रास्ता है, टट्टी का रास्ता है, इत्यादि ये सब जितने हैं 11 हैं, मन को लेकर के इन्हीं से हम अच्छा या बुरा करते हैं, यदि इन्हों से ही हम एकादशी करने मन के द्वारा उस दिन हम भगवत चिंतन करेंगे, जीवा से भगवान का नाम जैसे आप लोगों ने 2 घंटा 3 घंटा किया, यदि रात दिन करते रहे तो और आप लोगों को समय नहीं मिलेगा, पैर भगवान ने दिया तो आज धाम में जाएंगे ठाकुर जी का दर्शन करने जाएंगे, आंखें हैं भगवान का रूप दर्शन करेंगे, भक्तों का दर्शन करेंगे, ग्रंथ में अक्षर ब्रह्म को दर्शन करेंगे, शरीर दिया है तो इससे हम लंबा होकर के भगवान को प्रणाम करेंगे, चतुराई दिया तो चतुराई से भगवान का भजन करेंगे, इसी तरह से समस्त जितनी भी इंद्रियां हैं उनको 11 को आज भगवान के चीज में लगाना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई करेगा और अन्न को छोड़ करके निर्जला रहेगा, अथवा कुछ फल थोड़ा सा ले लिया, शरबत ले लिया, दूध ले लिया, तो आज के दिन ये करने से, पालन करने से मैं उसको समस्त पापों से, जन्म जन्मांतर के पापों से रिहाई दे दूं। हाँ, ये सब छोड़ देना पड़ेगा, चाय, बीड़ी, सिगरेट, पान, कोई भी चीज ना हो। आज एकादशी के दिन में मत लो, नहीं तो क्या होगा उसको बतला रहा हूं। तो चाय भी नहीं, चाय नहीं, चाय माने भगवान को चाहो और कोई चीज मत रखो, चाहो तो भगवान को चाहो और कुछ भी चाय में मत लगाओ। तो भगवान ने ये कहा, आज से जो लोग एकादशी के दिन में इस व्रत को करेंगे, अब विशेष नियम से करना हो तो पूर्व रात्रि में मत खाओ, दिन में जो खा लिया, और एकादशी के दिन में कुछ मत लो, निर्जला, और रात में एकादशी का जागरण करके भगवान का नाम करो। और भी तीर्थ में जैसे मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, कुछ ना हो तो तुलसी के तला में बैठ करके हो, जमुना के किनारे हो, तो वो अधिक फलदायक होता है। अब सभी लोग एकादशी सहज रूप में करने लग गए, अब जम के दरबार में कोई जाए ही नहीं, उनका एकदम जमराज का वो स्थान ही कुछ दिनों में एकदम खाली हो गया। अब वो जमराज जी बोले, जब काम ही नहीं है, कोई आता नहीं है, एक आदमी वकालत पास किया और गया और कोई केस ही नहीं आए तो क्या करेगा, एक बरस बेकार का हो गया ना। ऐसे ही जमराज ने कहा, जैसे हमारा जो काम था वो तो अब होता नहीं कुछ, इसलिए हमारा ये नाग पास है, पास पास माने जीवों को जो निकाल करके बांध करके ले जाते हैं, और हमारा रजिस्टर है जो ये क्या किया नहीं किया, अब अच्छा बुरा कोई लिखवाने के लिख लेते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, और एक बार राम नाम कर दिया, एक एकादशी पालन कर दिया, बस वो छूट गया सब, हमारा लिखना ये बेकार का गया। इसलिए प्रभु के पास में जाकर के बोले, जे प्रभु ये अपनी रस्सी लीजिए और ये पुस्तक लीजिए, अब हमारा कोई काम नहीं है, अब आप जमा कर दीजिए। क्या हुआ, तो हमारे पास में कोई आता नहीं, अब काम कोई रह नहीं गया, इसलिए ये सब आप लोग जमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा, ऐसा मत करो, काम मिलेगा तुम्हें, देखो एक बात करो, अब तक तो मैंने छुट्टी दे रखी थी, अब एकादशी के दिन भूल से भी यदि किसी ने अन्न का दाना ग्रहण कर लिया, रोटी खा ली, चाय पी लिया, या बीड़ी सिगरेट पी ली, कॉफी भांग पी लिया, पराग पान पराग ले लिया, और ऐसी गड़बड़ करेंगे, झूठ बोल दिया, एकादशी के दिन चोरी की, कपटता की, और कोई पाप कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो एकादशी करने वाले हैं, उनके पाप सब उनमें प्रवेश कर जाए। किन में? जो लेते हैं उनमें प्रवेश कर जाए। और जो एकादशी के दिन ये सब करते हैं, अन्न खा लेते हैं, सावा का चावल का खीर बना लेते हैं, पाव रोटी खा लेते हो, या ऐसे बातें करते हैं, पूरी पकवान भी खा लेते हैं, तो उनका एकादशी का फल मोहिनी को मिल जाए, मोहिनी कोई थी, वो मोहिनी को मिल जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, जैसे अच्छी बात है। अब उस समय फिर आने लग गए, और ब्रह्मा जी, उसने देखा ब्रह्मा जी ने, जे सब लोग तो अनायासी एकादशी पालन करते हैं, चले जाते हैं, इसलिए हमको कोई उपाय करना चाहिए, एकादशी को जरा कड़ा बनाए। इसलिए उन्होंने अपनी एक लड़की पैदा की, उसका नाम मोहिनी रखा, और लड़की ने कहा, जी मुझको किस लिए बुलाया, कहाँ जा रही है भगी, बट तुम्हारे लिए तो सुना रहा हूँ। तो मोहिनी को बहुत सुंदर बनाया। मोहिनी ने कहा, जे पिताजी मुझको किस लिए बुलाया, किस लिए बनाया, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम देता हूँ, ये काम जो पृथ्वी में आजकल कोई पाप भी करके एकादशी व्रत कर लेता है और बैकुंठ चला जाता है, तुम ऐसा जा करके करो जो कोई एकादशी न करे, सबसे पहले यहाँ पर इस समय में हरमंगद और उनका लड़का है रुकमांगद दो है, वो अपने राज्य भर में ऐसा व्यवस्था कर दिया जो ये कारसी नहीं करेगा या नहीं करेगी उनको अपने राज्य से निकाल देंगे, अपने राज्य में नहीं रहने देंगे, तो उनको जाकर के एकादशी तुम बंद करवा दो। राजा भी अपने लड़के को राज्य दे करके वो वन में गया है भगवान का भजन कर, उनका नाम था धर्मांगद, तुम वहीं पर जाओ वन में और ऐसा पाठ पढ़ाना जिससे कि उसकी भी एकादशी चली जाए और उसके बेटे की भी एकादशी चली जाए, उसकी स्त्री की भी, तुमसे यही मैं कहता हूं। ठीक है, ये तो चुटकी बजाते काम कर दूंगी। बस महाराजा जो वहां पर गए थे 50 वर्ष की उम्र के बाद में तपस्या करने के लिए, वो वहां पर बन ठन करके गई और राजा ने उसको देखा और उसने उसको देखा और राजा के सामने ही आ करके घूम रही थी, केस खुले, कपड़े इधर उधर। राजा ने कहा जी आप कौन हैं? मैंने कहा, उसने कहा जी मैं राजा की लड़की हूँ, तो यहाँ पर किस लिए घूम रही हैं? तो इसलिए कि मैं अपने योग्य पति खोजती हूँ, पृथ्वी भर में हमारे योग्य कोई पति नहीं मिला, किंतु देखते कि आप हमारे पति योग्य हैं, मैं आपके अतिरिक्त किसी को पति के रूप में वर्ण नहीं करूंगी। राजा ने देखा जी थे बड़ी सुकुमार, बड़ी अच्छी लड़की है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जैसे मैं तुमसे विवाह करूंगा। कहां तपस्या करने आया, विवाह करने बैठे। थोड़ी देर के बाद उसने कहा जी हम विवाह करेंगे आपसे, किंतु एक शर्त है, हम जो कुछ कहेंगे उसके विरुद्ध में आप ना नहीं मत करना, हम जैसा कहेंगे वैसे आप करेंगे, तब तो शादी कर। उन्हें कहा अच्छा तुम जो कुछ कहेगी मैं मान लूंगा, कोई बात नहीं है, शादी हो जाए। तो चलो बस राज्य में ले आए, उनकी पहली बारी रानी थी और लड़के थे। जब सुना जी पिताजी आ रहे हैं और एक दूसरी अपनी स्त्री को साथ में लिए हुए, तो बड़े आगवानी किया, स्वागत किया, हाथी घोड़े लाए और उनको बैठा करके चमट डुला करके ले आए। और लड़के ने मैया से कहा जी मैया एक बात करना, वो उम्र में तुमसे छोटी है किंतु राजा की प्यारी है, इसलिए तुम उसको अपनी बड़ी बहन मान करके ही उसकी सेवा करना और उसके विरुद्ध कुछ मत बोलना, कुछ गलती भी हो तो उसको तुम मत देखना, सब समय दोनों की सेवा करना, और मैं तो उनका सेवक ही हूँ, दोनों मिलकर के उनकी सेवा करें। और पिताजी जैसे हैं वृद्ध हो गए हैं। दूसरे दिन थी एकादशी, ढिढोरा बज रहा था आज कल एकादशी आने वाली है, स्त्री पुरुष आठ वर्ष की उम्र से लेकर और 80 वर्ष के उम्र के बीच में स्त्री और पुरुष कोई भी हो सबको एकादशी कल करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा दंड के रूप में हम बाहर कर देंगे, अपने राज्य में नहीं रहने देंगे और बड़ा कठोर शासन करेंगे, दंड देंगे। रानी जो नई आई थी नवेली ने कहा ये प्रिय ये क्या ढिढोरा बज रहा है, ये ढिढोरा बज रहा है ये कल एकादशी होगी, सब लोगों को एकादशी करना होगा, ये मैंने नियम बनाया था, हमारा लड़के ने इस नियम को अभी भी चला रहा है, ये तो कल एकादशी होगी, हम दोनों मिलकर के एकादशी करेंगे। एकादशी किसको कहते हैं? एकादशी नहीं, आप राजा हैं मैं रानी हूं, हम लोग कमजोर हो जाएंगे तो देश चौपट हो जाएगा, आक्रमण करके दूसरे लोग शत्रु लोग राज्य ले लेंगे, इसलिए आपको मैं नहीं एकादशी करने दूंगी, मैंने वचन भरवा दिया है पहले से, इसलिए आप एकादशी नहीं कर सकते, और यदि करेंगे तो मैं चली। राजा ने कहा भली तू चली जा अभी कल मत जाना, आज ही चली जाओ, अभी चली जाओ, तुरंत अभी चली जाओ। इतने में बड़ी रानी आ गई, वैसे बहन तुम इनको एकादशी करने दो, कहे नहीं ये नहीं हो सकता, या तो मैं रहूंगी तो एकादशी नहीं करेंगे और नहीं तो मैं चली जाऊंगी आज। बहुत समझाया बुझाया किंतु मानी नहीं, कहे तुम कोई भी शर्त लगाओ, कुछ भी कहो, इनको एकादशी करने दो। हाँ मैं शर्त लगा सकती हूँ, क्या? तुम दो, हाँ ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने कहा जब राजा को एकादशी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण लोग आकर के बतलाएं तो उन्होंने ब्राह्मणों को 10-10 5-5 रुपए दक्षिणा के दे दिए। ब्राह्मण लोग तो ऐसे लोभी, जो भी उनसे करवा लो उनको रुपया चाहिए, बस उन्होंने मान लिया और कह दिया जे नहीं एकादशी नहीं करना चाहिए। मैं तुम लोग को नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मणों को कह रहे हैं, चौबाइन के लिए नहीं, चौबों के लिए। चौबे कोई नहीं है ना। अच्छा सुन, नीचे जाए कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा, ब्राह्मणों ने कह दिया नहीं राजाओं को एकादशी और रानियों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जब ब्राह्मणों को हम नहीं मानते हैं ऐसे, ये कलयुग के ब्राह्मण हैं, ये सतयुग और त्रेता द्वापर के ब्राह्मण नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों से कोई भी जरूरत नहीं है। उनसे यदि कोई काम कराएगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि खुद ही एकादशी नहीं करते, कोई धर्म कर्म नहीं करते, उससे बल्कि अच्छा है अपने आप कर लो सब। तो उन्होंने ब्राह्मणों की बात नहीं मानी। हाँ तो रानी ने कहा एक शर्त है जिस पर कि मैं एकादशी पालन करूंगी, क्या, और राजा को आदेश दूंगी जैसे ये एकादशी व्रत कर सकते हैं। तुम और राजा दोनों मिल करके, तुम्हारा एकलौता जो पुत्र अभी जो राजकुमार है, दोनों तलवार लेकर के एक साथ गला उतार करके सोने के थाल में हमको उपहार ले आओ।
काटते समय रो नहीं सकती,
और काटते समय रोएंगी नहीं, हंसते हुए काट करके देना पड़ेगा, यदि रो लिया तो हम नहीं मानेंगे। राजा रानी दोनों ही, राजा तो स्वीकृत नहीं हो रहे थे, किंतु रानी ने बहुत समझा करके कहा ये अंतिम परीक्षा है, कोई बात नहीं है, तुम राजी हो जाओ। तो दोनों तलवार लेकर के खड़े हुए लड़के को काटने के लिए, तो जब ही तलवार उठाया त्यों ही वहां पर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा जब वर मांगो, तुमने हमारे लिए इतना किया, ये काशी के लिए भले ही पुत्र को मारना है वो उसको मार देगा, अपना जान डाल डालेंगे, किंतु काशी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी जो प्रतिज्ञा करने वाला है मैं सब कुछ उसको देने के लिए तैयार। तो राजा रानी ने कहा जे प्रभु एक बात कीजिए, वर मांगता हूँ, हम लोग मांगते हैं कि कलयुग में ऐसी कड़ी परीक्षा आप मत लीजिए आइंदे से, नहीं तो कोई पास नहीं होगा, सब फेल हो जाएंगे, और एकादशी के नियम को कलयुग के लिए थोड़ा सा सीधा और सरल बना दीजिए। तो उन्होंने कहा जी अच्छी बात है, कलयुग में यदि भूख लगे आलू उबाल करके दूध के साथ में खा लो, दूध पी लो, कितने तरह के फल हैं वो एक बार नहीं होता तो दो बार भी खा लो, कोई बात नहीं है प्राण रक्षा के लिए, किंतु अन्न किसी भी स्थिति में मत खाओ ना? और रात भर जागरण नहीं कर सकते, जहां तक हो सके हरि नाम करो ना? उस दिन हो सके पवित्र नदियां हो, पवित्र पानी हो, नदी में स्नान करो, भगवान का पूजन करो, जमुना जी का पूजन करो, गिरिराज जी का परिक्रमा पूजन इत्यादि करो, सहज रूप में बस तुम लोग यदि हरिनाम उस दिन कोई यदि करेगा तो मैं उसके समस्त पापों को दूर करके बैकुंठ की गति दे दूंगा। कलयुग में जितने भी सोमवार का व्रत, मंगल का व्रत, बुधवार का, बृहस्पति का, शुक्र का, शनिवार का व्रत, शनिवार को शनिश्चर का व्रत होता है, रविवार माने सूर्य का, इसी तरह से सोम को चंद्रमा नहीं शिव जी का होता है, सोम का मंगल का मंगल ग्रह का होता है, इनका कोटि कोटि व्रत करने का जो फल होगा एकादशी के चरण धोवन के बराबर भी नहीं होगा, ऐसा समझ लो। इसलिए एकादशी का सब कुछ छूट जाए, एकादशी का व्रत न छूटे, और उस दिन कीर्तन करना ना छूटे, बस सब मंगल ही मंगल, नाम जपत मंगल दस दिशाओं, सब दिशाओं में मंगल। और यदि इससे भी अच्छा हो, यदि किसी ने गुरुकरण न किया हो तो शुद्ध भक्त देख करके गुरु करे और उनके आश्रय में रह करके भजन करे और एकादशी करे तो बस चुटकी बजाते ही सब कुछ उसको ने? और कुछ तत्व जान करके यदि करे तो और उत्तम। क्या तत्व? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान की दासी हूं, मैं भगवान का दास हूं, ऐसी भावना लेकर कभी झूठ न बोले, चोरी न करे, ये सब नहीं करते हुए भगवान का भजन करे, दोनों एकादशियों का पालन करे, एक काली गैया है और एक सफेद गैया, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। बहुत से लोग एक को एकादशी कर ले लेते हैं अथवा शुक्ल पक्ष की करते हैं, कृष्ण पक्ष वाली नहीं करते, ऐसा नहीं, बल्कि काली गाय का महत्व और अधिक है, उसका दूध भी अधिक अच्छा होता है, पुष्टकारी होता है, इसलिए दोनों एकादशी हो और भगवान का भजन करते हुए क्रमशः और अपनी संख्या बढ़ाइए और भगवान का भजन कीजिए।
एकादशी महारानी की जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरत्तिहे। समय हो गया मैं संक्षेप में एक श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या करके समाप्त करता हूँ। एकादशी में यदि 11 इंद्रियों को ही भगवान के समस्त सेवाओं में लगा दिया जाए तो तब फिर बाकी क्या रह जाएगा? भगवान की कथा सुनने में कान को लगा दिया जाए, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को सूंघने में लगा दिया जाए, आंखों से देखने में श्री विग्रह और वैष्णव के चरण दर्शन में लगा दिया जाए, मस्तिष्क को भगवत चिंतन में लगा दिया जाए, शरीर को लगा दिया जाए भगवान के दंडवत प्रणाम करने में, पैरों को लगा दिया जाए तीर्थों में जाने के लिए, इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को लगा दिया जाए तो तब फिर कुछ बाकी नहीं रहता। इसीलिए एकादशी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया और सब व्रतों में ध्यान में लगा दिया मन को, किंतु ध्यान में लगाने से केवल एक इंद्रिय काम में आई, क्या?
मन।
और कोई इंद्रिय काम में आया? नहीं आया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ यह है, मान लिया कि आप तीर्थ में जा रहे हैं तो केवल पैरों से जा रहे हैं और बाकी हाथ से मंदिर मार्जन कर रहे हैं तो हाथ ही काम आएगा, किंतु एकादशी एक ऐसी चीज है जिसमें 11 इंद्रियों को ही भगवान की सेवा में लगा करके सहज ही अनायासी भाव सागर को पार करके भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए एकादशी तिथि को कहा गया भगवत भक्ति की जननी माँ मैया, एकादशी तिथि का पालन करने से भक्ति का जन्म हो जाता है, भक्ति आविर्भूत हृदय में हो जाती है। इसलिए एकादशी को पालन करेंगे। बहुत से लोग आजकल कहते हैं जो वो सब करके क्या होगा, वो नहीं करते हैं। विशेष करके आज के आधुनिक पढ़े लिखे लोग जो कि कुछ नहीं जानते हैं वैसे, और पढ़े लिखे लोगों में जो विचार करके देखते हैं वो लोग पालन करते हैं, जो बुद्धिमान है पढ़े लिखों में। अन्यथा वो लोग दाखियानुषी या सांप्रदायिक चिंताधारा कह करके उसकी उपेक्षा करते हैं, उसका फल भी भोग करते हैं। आज हम लोग चल रहा है हम लोगों का प्रसंग, हमारे सनातन गोस्वामी जी भक्ति रसायन ये दे रहे हैं। यदि एकादशी के दिन भक्ति रसायन का पान किया जाए तो सहज ही में भगवान की भक्ति प्रेमा भक्ति हो जाएगी। उसमें बतला रहे हैं एकादश स्कंद में कृष्ण ने उद्धव जी को जो ज्ञान और भक्ति का संदेश दिया था या संवाद, उसको कहते हैं उद्धव संवाद। श्रीमद् भागवत के सप्तम अध्याय, एकादश स्कंद के सप्तम से या नवम अष्टम से 29वें अध्याय तक, इसको उद्धव संवाद कहते हैं। उसमें उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं, कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, कैसे इंद्रियों के भावों को और कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन हम कर सकते हैं। अंत में लेते 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 कृष्ण ने गोपियों का उदाहरण ये सब दिया। उसी के लिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी उसी का उद्धृत करके उसको ग्रहण करके यहाँ पर दे करके कह रहे हैं, मत कामा रमणम जार अस्वरूप विदो अबला ब्रह्मां परमं प्रापु संगात तत् सत् सहस्त्रशः। कह रहे हैं मत कामा रमणम, जो कि भगवान के मैं जो परब्रह्म हूं, ब्रह्म मां परमम, परमम ब्रह्म मां प्राप्त, अर्थात जो मैं परब्रह्म हूं कौन, अपने को दिखला करके मैं जो नंदनंदन कृष्ण हूं, इनका तत्व न जान करके भी तत्व नहीं जानते हैं, जो भगवान क्या तत्व, मैं क्या तत्व हूं ये भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, धर्म अधर्म का तत्व भी नहीं जो जानते, ऐसे लोग भी संगात सत सहस्त्र सह, एक दो नहीं, भगवान के प्रति जिनकी प्रेमा भक्ति है और भगवान के साथ में जो रमण किया, भगवान के साथ में जो विहार किया, ऐसी जो गोपियां हैं, इन गोपियों के संग से तत्वों को, भगवत तत्व और अपने तत्व को, माया तत्व को न जान करके भी पुलिंदी जैसी, पुलिंदी माने जंगली जातियों के लड़कियां भी ने? जो गोबर कंडे इत्यादि लकड़ियां बिनने वाली वनों में देखने में अगली कुरूप भी, और वो गोपियों के संग में रह करके जार बुद्धिया, जार बुद्धि के द्वारा हमको रमण के रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा के लिए, श्रुतियों के लिए जो चीज असंभव है, बड़ा कठिन है, श्रुतियां लाखों वर्ष तपस्या करके कठो और इस चीज को पाई नहीं, यहां पर जार बुद्धि और अस्वरूप भी दो, स्वरूप को नहीं जानती कि मैं कौन हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं सच्चिदानंद तत्व हूं, और कृष्ण कौन है, सर्व कारण कारण है, पर ब्रह्म है, विश्व ब्रह्मांड के नियंता है, एक एक भ्रिकुटी से उनकी क्या, उनका जो लास्ट फ्रैक्शन है विष्णु, उनके अंश के अंश के अंश का कला का विकला का सकला, यह है विष्णु, उनके भ्रुभंगी से जगत के सृजन और संहार हो जाता है, गर्भोदशाई विष्णु। तो वो जो मूल जो कृष्ण है उनके प्रति यदि उनका तत्व भी भगवान का कोई नहीं जानता, अनायास ही ऐसे ही जैसे आग में हाथ कोई दे दे तो आग जलाएगी नहीं,
यदि एक साधारण भगवान की बनाई हुई एक आग उसमें नहीं जाने हुए अभी हाथ देने से हाथ को जला देगी, तो ये भगवान का भक्ति जो है वो जान करके नहीं करेंगे, तो भी भगवान का नाम करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे और उसका कल्याण नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल्कि भक्ति भाव में सबसे उच्च भाव जो है परकीय भाव है, जिसको जार बुद्धि भी कहते हैं। जार बुद्धि इसलिए कहते हैं, वो इस तरह का प्रेम है ने? जिससे जार माने जारयति समस्त पापानी, समस्त पापों को, समस्त कामनाओं को जो समूल से ही जला करके ध्वंस कर देता है, उसको जार बुद्धि कहते हैं। कृष्ण में ऐसा उत्तम सर्वोत्तम भाव प्रेम हो जो कि हमारी समस्त भावनाओं को, कामनाओं को, गंदी पापे को, सब को जला करके भस्म कर देता है, जारयति, ऐसे भाव को जार कहते हैं। जार माने या, साधारण भाषा में या, किसी का यार। कृष्ण को यार करना ये सहज काम है, संसारिक लोगों में परस्पर यार हो सकते हैं, इस यार से नरक में जाएंगे, और कृष्ण को इतना प्रेम किया जो उसका यार बना दिया कृष्ण को, उसको कहते हैं जार बुद्धि। कृष्ण में जैसे गोपियों का था, उनके संग से क्या ये नित्य सिद्धा है, कृष्ण की लादनी शक्ति के प्रकाश, इनके संग से यदि चिंतामणि के संग से उसको छोड़ दो, चिंतामणि एक होता है
चंडीदास,
नहीं वो लोहे को छुला देने से पारस पत्थर, पारस पत्थर हम लोगों ने देखा तो नहीं है किंतु सुना है जरूर, पारस पत्थर में किसी लोहे को छुआ दो, स्पर्श करा दो, तो वो सोना बना देता है। और भगवान और भक्त जो हैं, उनको जो छूने वाला और वैसा नहीं बन जाएगा, प्रेमा भक्ति जिन में है वो चिंतामणि से भी, पारस पत्थर से भी अधिक श्रेष्ठ है। ऐसे भक्तों का संग करने से, उनके लव मात्र के सत्संग से, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो जाती है। इसलिए गोपियों का संग किया उन पुलिंदियों ने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, और जिन लोगों ने संग किया एक मिनट भी, एक आधे में पुनि आध, आधा में भी पुनि आध, सेकंड भी किया, तो वो कैसी हो गई, वो भी भगवान के प्रति जार बुद्धि रख करके उनको भी बना लिया, और दूसरे जन्म में या उसी जन्म में भगवान के साथ में रमन कर रही हैं, ये क्रिया यहां पर दे रहे हैं। रमन करेंगी नहीं, रमणन, रमण के रूप में उनको प्राप्त कर लिए इस जन्म में या उस जन्म में। तो यदि कोई उन पुलिंदियों से श्रेष्ठ हो और ऐसे भक्तों का संग जिनको मिल जाए और भी धाम में मिल जाए, तो क्या बाकी रह जाएगा, कुछ भी बात जरूर अवश्य ही वो भाव हो जाएगा भगवान के प्रति, उसका जन्म एकदम सुधर जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं ब्रह्म माम आपु, मैं ब्रह्म हूं, पर ब्रह्म हूं, साधारण ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म हूं, रस ब्रह्म हूं, मैं उसको प्राप्त, उसको खेच करके अपने पास। ऊपर का पुलिंदी शरीर तो गंदा है, ये ठीक है, मैले कुचैली रहती है, तत्व का ज्ञान भी नहीं है, किंतु भीतर की आत्मा कैसी है, निर्मल है ना। इसी तरह से भगवत भक्तों के संग से ऐसा ही हो जाता, बोले रिकॉर्ड हो जाए
और तब फिर कैसे भजन किया, और श्रद्धा किसको कहते हैं, रुचि, आसक्ति, भाव, ये सब जान लिया अनुभव के साथ में, जान लिया केवल ऐसे नहीं, तत्व से जानना एक और भाव से जानना एक, दोनों में बहुत अंतर है। साधन के द्वारा होगा, जैसे हरिदास ठाकुर जी यदि 3 लाख नाम करते हैं तो कितना सोते होंगे, कितना सोते होंगे, 3 लाख कहीं सुने का कोई प्रश्न नहीं। दास ठाकुर जी कौन क्लास तक पढ़े हुए थे? उन्होंने पढ़ने के लिए परिश्रम क्यों नहीं किया? ये बेकार के लिए इसमें लगा दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
उन्होंने आगे जाने पढ़ा हुई थी चलो ब्रह्मा चले तो प्रहलाद और ब्रह्मा तर उधर तो आगे तो सब हुई।
उन्होंने देखा कि चारों वेद पढ़ करके हमको कुछ लाभ नहीं, छोड़ो इसको भजन को। अभी पढ़ते पढ़ते यदि मर जाएंगे तो फिर क्या हो? हम लोग चेष्टा करते हैं अपनी चेष्टा से उनको जानने के लिए, और भक्त लोग भक्ति के माध्यम से उनको उनकी कृपा से जानने के लिए चेष्टा करते हैं। इसी को यहाँ पर थोड़ा सा रागात्मिका में उसका थोड़ा सा आभास दे रहे, वो इसी को यहाँ पर करें। अस्वरूप विदो अबला, अबला मैंने विद्या का बल नहीं है, कोई साधन भजन का भी बल नहीं है, कोई बुद्धि का बल नहीं, शारीरिक बल नहीं, कोई भी बल नहीं, इनका सत्संग का बल भी नहीं था। नीच जाति में उत्पन्न हुई, गोबर कंडे बीन रहे, इसलिए वो सब प्रकार से अबला। और अस्वरूप भी दो, कृष्ण का स्वरूप तो जानना चाहिए ना, पहले जानना चाहिए जिसे हम किसकी बात पर विश्वास करें, गुरु परंपरा की बातों पर वही प्रमाणित। और तब फिर गुरु उस गुरु परंपरा के वचनों से वेदों से ये जानेंगे कि कृष्ण ही परम तत्व है, वे सर्वशक्तिमान है, वे रस के समुद्र है, उन्हीं से अखिल जीव निकले हैं, उन जीवों में से एक नित्य बद्ध है, बद्ध होकर के अभी तक संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उच्च नीच जोड़ियों में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। और कुछ जीव हैं भगवान का आश्रय पा करके भगवान का नित्य सेवा करते हैं, अखिल विश्व ही भगवान से उसका भेद भी है, अभेद यह अचिंत्य है। और भक्ति के द्वारा ही जीव भगवान को जान सकता है, यह भक्ति मूर्ख व्यक्ति कर सकता है या नहीं, मूर्ख व्यक्ति कर सकता है या नहीं, जो साधारण दृष्टि में लोगों की दृष्टि में मूर्ख है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, वो जान सकता है कि नहीं? मतलब
जान सकता है,
यदि ऐसी बात नहीं होती तो फिर तो बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है, हमारे जैसे अपढ़ लोगों के लिए बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान ने केवल मनुष्य जाति के लिए ही नहीं, पढ़े लिखे हुए के लिए नहीं, किसी भी जोनी में कोई भी जीव हो उसको वैष्णव का किसी प्रकार से यदि संग मिल गया तो वहीं से वो भक्ति कर सकता है, अन्यथा ब्रह्मा जैसा वेद का ज्ञाता हो करके पढ़ लिख करके भी मोह में पड़ा जाएगा। फिर उस भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, और उस भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम को पाया जा सकता है, यही प्रेम ही प्रयोजन। देखो भगवान ने ऐसा किया, ये पढ़ने लिखने में बहुत समय लग सकता है, बल अर्जन करने में लग सकता है, बुद्धि बनाने में बहुत समय लग सकता है, किंतु मान लिया कि एक गांव की बिना पढ़ी लिखी हुई एक किसी छोटे से कुल में अत्यंत नीच कुल में जन्मी हुई लड़की है या लड़का है, उनमें प्रेम होगा कि नहीं? उसको बच्चा होगा तो वो अपने बच्चे को प्रेम करेगी कि नहीं करेगी? तो उसको सीखना कौन सा कॉलेज में पड़ेगा? इसलिए इस चीज को समझो अच्छी तरह से, जी ये प्रेम की विद्या शास्त्रों के पढ़ने से या और किसी भी चेष्टा के द्वारा नहीं होगा, ये समझो अच्छी तरह, चाहे रट रट करके हम पढ़ पढ़ करके पागल हो जाए नहीं, ये कैसे हो? यदि कोई प्रेमिक व्यक्ति हो उसका संग हो तो हो जाएगा किसी तरह से।
अन्यथा नहीं, उसी को यहाँ पर कहा है। एक तरफ में भगवान के प्रति सबसे श्रेष्ठ जो भक्ति है, उन्नत उज्ज्वल रस वाली भक्ति वो है, और एक तरफ में उसका पात्र अत्यंत अयोग्य, बिना पढ़ा लिखा, मूर्ख, वन के वन की जातियों में जन्म, पुलिंदी, और वो कंडे इत्यादि, बिना लकड़ी, बिना इत्यादि काम,